ज्ञानेश्वरी गीता के छठे अध्याय को जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे उनको पता चलता है कि कुंडलनी शक्ति नाभि से नीचे एक प्रकार के बल का भंडार पड़ा है। योगी प्राणायाम और साधना करके 12 वर्ष में भी उसको जगा ले तभी भी खुशी की बात है, 12 महीने में भी जगा दे हो सकता है, 12 दिन में भी वो शक्ति जाग जाए हो सकता है, और गुरु कृपा हो जाए, स्पर्श दीक्षा मिल जाए अथवा दृष्टिपात की दीक्षा मिल जाए तो 12 घंटे में भी, 4 दिन की शिविर 12 घंटे, 2-2 घंटे सुबह शाम, 4 घंटे 3 दिन, 12 घंटे में भी कईयों की वो शक्ति जागृत हो जाती। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की तो नरेंद्र की वो शक्ति जागृत, तो फिर वो दौड़ने लगे और कुछ का कुछ होने लगा। तो रामकृष्ण तो चले गए, शिष्यों ने जाके कहा कि नरेंद्र को कुछ हो गया है। बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है हमने किया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। वो कुंडलनी शक्ति जब जागृत होती है तो नए नए साधक को तो आश्चर्य होता है, दिव्य दर्शन होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। मूलाधार केंद्र जागृत होने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, त्रिकाल दर्शन होता है और शक्ति सिद्धियों का विकास होता है, मनोबल बुद्धि बल का विकास होता है, नाभि के नीचे का केंद्र जागृत होता है। फिर नाभि के पास का केंद्र है उसे स्वाधिष्ठान केंद्र बोलते हैं, नाभि के पास वाला, उधर अगर भगवान की गुरु की कृपा हो जाए और वो केंद्र विकसित हो तो अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य हृदय में प्रकट हो जाएगा। उसका श्वास जो है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अभी क्या होता है, साधारण लोग या तो सूर्य नाड़ी से श्वास लेते छोड़ते या तो चंद्र नाड़ी से, लेकिन वो योगी वो साधक पर भगवान की गुरु की कृपा हो जाती तो इन दोनों नाड़ियों से, विशेष नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, कभी कभी दोपहर को किसी किसी की थोड़ी देर चलती है, लेकिन जैसे अभी जंप कराया तो ये सुषुम्ना नाड़ी चलने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। ऐसा घर में भी रोज करना, दिन में एक सुबह उठकर और शाम को 2 बार तो करना चाहिए, तो बस इस स्नायुओं का मोहताजी नहीं रहेगी। सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपके जैसे मधुमक्खियों का छत्ता उड़ता है तो मक्खियां कहाँ जाती पता है, कि उसमें एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी जहां जाती है वहीं सारी मक्खियां फॉलो करती है। ऐसे ही तुम्हारी 72,000 नाड़ियां हैं, यहां तक वैसे तो लाखों है, तो उन 72,000 नाड़ियों की रानी मक्खी सुषुम्ना नाड़ी है, और ये 72,000 को दूसरी नाड़ियां जो उनके आधारित आधार से चलती, सारी के सारे शरीर के नाड़ी जाल की वो मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो 10 अरब जो न्यूरॉन्स हैं वो भी सुषुम्ना नाड़ी से पुष्ट होते हैं। तो स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत होने से साधक के प्राण फिर चलेंगे तो साधारण आदमी की ना ही श्वास लेगा छोड़ेगा, लेकिन उसका श्वास केवल सूर्य नाड़ी से नहीं चलेगा, केवल चंद्र से नहीं चलेगा, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने लगेगा। तो साधना के समय तो उसको लाभ हुआ, लेकिन चलते फिरते भी उसके श्वासोश्वास अंदर काम करने लग जाएंगे। तो पहले जितना संसार की बात सुनकर दुख हो जाता था, दुख की बात, सुख की बात सुनकर बाछे खिल जाती थी, उतना फिर नहीं होगा, वो पुष्ट हो गया। जैसे तुम छोटे थे ना तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप से तुम इतने राजी हो जाते और 2-4 आने के खिलौने छीन लिए तो तुम बहुत नाराज हो जाते, मानो पूरा गढ़वाल कुछ भी माना नहीं रखता। 4-8 आने की चीज बच्चे की छीन लिया, गढ़वाल के बच्चे की, बच्ची की 4-8 आने की चीज छीन लिया तो उस समय उनके लिए गढ़वाल कुछ नहीं, वो खिलौना अच्छा है, लेकिन अभी अभी तो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी चार आठाना कोई माना नहीं रखता। ऐसे साधन करने के बाद ये संसार की उपलब्धियां, शादी और प्राइम मिनिस्टर पद भी चार आठाने की चीज जैसा लगेगा। वो आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ये इच्छा नहीं होगी, दूसरे को बनाने का सामर्थ्य होते हुए भी आप बनने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे भी कई योगी हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं, दूसरे को करोड़पति बनाने का शक्ति होने पर भी अपने इच्छा नहीं रहेगी। तो ये हिंदू धर्म में जो योग विद्या है, हिंदू धर्म में जो आत्म विद्या है, हिंदू धर्म में जो आदमी के विकास के भंडार भरे हैं, वो दुनिया के किसी रिलीजियस में नहीं, किसी मजहब में नहीं है। वो अपने अपने ढंग पे थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से लिया, बाकी अपना थोड़ा लेबल वेबल लगा रहे, थोड़ा चला रहे, बाकी ये वैदिक धर्म में सारे रहस्य भरे हैं। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सीता की खोज करके एक महीने में वापस आना है। अब खोजते खोजते एक महीना तो होने को है, बड़े चिंतित थे, भूख और प्यास ने घेर लिया था। तो ऊंचे किसी पेड़ पे चढ़कर हनुमान जी ने हाथ का छजिया बनाकर दूर दूर नजर दे ली। हनुमान जी देखे तो यहां से गढ़वाल दिख जाए, नैनीताल दिख जाए, तो देखा यहां सन्नाटे में कहीं पानी नहीं। फिर दूर दूर नजर डाली कि पक्षियों की आन जान है और कुछ वृक्ष हैं, जब पक्षी और वृक्ष हैं तो पानी होगा। तो वहां हनुमान गए तो देखा सन्नाटा और एक शांत आश्रम, कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो खोजते खोजते देखा कि एक कन्या बैठी है ध्यान में, उसका नाम था स्वयं प्रभा। लिख पढ़ के एमए की डिग्री पा लिया, प्रभा बना ली, ये तो रटा रटाया है। स्व की प्रभा, आत्मा का औज। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि अच्छा तुम राम दूत हनुमान जी हो ना। तो हनुमान जी दंग रह गए, देवी आपने सत्य कहा है। तो क्या सीता जी को खोजते खोजते भूख प्यास से तुम व्यग्र हो गए तभी इधर आए हो? देवी आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानती हैं। अच्छा हनुमान जी जाओ फल खा लो, जो चले चले आए, खून गर्म है ना तो तुरंत पानी नहीं पिया जाता। तो स्वयं प्रभा ने कहा जाओ पहले फल खाओ और फिर फलानी जगह पर झरना है पानी पियो, बाद में आ जाओ। करोड़ों लोग हनुमान जी को प्रणाम करके अपना भाग्य बनाते और हनुमान जी भारत की उस कन्या को प्रणाम कर रहे। तो कन्याओं में कितनी शक्ति छुपी है, बच्चों में कितनी शक्ति छुपी है। रामी रामदास 8 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए, ध्रुव 5 साल के और भगवान के दर्शन करने में सफल हो गए, क्योंकि सबके अंदर भगवत तत्व बीज रूप में छुपा है। अब उसको बीज है, छोटा सा वट का वृक्ष का बीज है, अब आप उसको देखकर बोले कि क्या है इसमें, कहां वट वृक्ष है। लेकिन भैया उस वट वृक्ष के बीज को जरा सा मिट्टी पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, तो जरा सा बीज भी विशाल वट वृक्ष हो सकता है। ऐसे जरा सा छोटा सा एक साधारण व्यक्ति भी साधना और सतगुरु की कृपा मिल जाए तो महापुरुष बन सकता है, महान आत्मा बन सकता है। तो स्वयं प्रभा को कोई सतगुरु मिल गए थे और सतगुरु मिले और स्वयं प्रभा ने सतगुरु की कृपा को मानो पी लिया। जो सतगुरु ने कहा इस ढंग से उसने साधना जाके शुरू कर दी। तो गुरुवर मेरी साधना कब सफल होगी? बोले बेटी साधना उस दिन सफल हो जाएगी जब रावण सीता को चुरा के ले जाएगा और राम जी हनुमान को आज्ञा करेंगे और सीता की खोज करते करते भूख प्यास से व्याकुल हनुमान जब तुम्हारे यहां आएंगे तो समझ लेना तुम्हारी साधना पूरी हो गई। तो आप आए तो मुझे लगा कि आप हनुमान जी हैं, और सीता को खोजते खोजते भूख प्यास से, ये मेरे को गुरु जी ने कहा था। तो अंगद भी थे, जामन भी थे, सुग्रीव आदि थे। तो स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम सीता को खोज रहे हो तो क्या आंखें खोल खोल के खोज रहे हो कि आंखें बंद करके खोज रहे हो? तो सुग्रीव जो राजसी आदमी था सोचा कि ये कैसी लड़की है, हम आंखें बंद करके कैसे खोजेंगे, आंखें को फाड़ फाड़ के खोज रहे हैं। बोले अंगद रुष्ट मत होना, सीता को खोजना है तो आंखें फाड़ कर सीता नहीं मिलेगी, आंखें बंद करो। सीता माना राम की अर्धांगनी, राम माना ब्रह्म और सीता माना ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्या में जैसे योगी ध्यान करते और अंदर जाते हैं, ऐसे ही सीता को खोजो। मैं खोज के बताती हूं। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यशांतम विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। जिस परमेश्वर के ध्यान में देवता ब्रह्मा जी सुर आदि शांत होते हैं और सब कुछ पाते, उसी परमात्मा में वो शांत हो गए। और क्षण भर में कहा कि सीता को इधर उधर क्यों खोजते हो, वो तो समुद्र पार अशोक वाटिका में है, जहां शोक का प्रभाव न पड़े ऐसी अशोक वाटिका। तो बोले दरिया समुद्र किनारे जाते जाते तो हमारा जो मयाद है एक महीना पूरा हो जाएगा, समुद्र किनारे हम पहुंच नहीं सकते, और वो समुद्र किनारे से पार है कैसा होगा? स्वयं प्रभा कहती है आप चिंता न करो, आप आंख बंद करो हनुमान, आप में उड़ने की शक्ति है, लेकिन सब लोग इतना तेज नहीं जा सके, मैं तुमको मदद करती हूं। आंख बंद करो, मैं अपने योग शक्ति से आपको समुद्र किनारे पहुंचा देती हूं। बस आंख बंद किया, क्षण भर में खोल लेना, आप समुद्र किनारे होंगे। आंख बंद किया और स्वयं प्रभा ने अपनी योग शक्ति से ठांडे सकल सिंधु के तीरा, रामायण में लिखा हुआ है। एक किसी योगी ने, साधक योगी था, उसने सुना कि हिमालय में बद्रीनाथ के रास्ते पहले जोशी मठ आता है। जो लोग गए बद्रीनाथ उनको पता होगा जोशी मठ आता है, फिर बद्रीनाथ नहीं जाना है, जोशी मठ से पहले पीपल कोटी आता है, पीपल कोटी से सीधा पूर्व की तरफ चलते जाओ तो फलाना पर्वत आएगा, वहां अलग अलग पहाड़ों के नाम है। उस पर्वत से थोड़ा सा उधर को जाओगे तो एक ऐसा रास्ता आएगा, उसमें अंदर अंदर चले जाओगे तो फिर ऐसी ऐसी गुफा आएगी और वहां बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। 1952 में योगानंद सरस्वती ने ये बात, तो विष्णु प्रयाग से आगे मृत्युशय पहाड़ है, तो उधर पड़े योगी सिद्ध पुरुष रहते हैं। तो खोजते खोजते 1952 की बात है, आज से 52 वर्ष पहले की बात है, योगानंद सरस्वती पहुंचे तो सही, खोजते खोजते और बड़ी मुश्किल से लेट के उस जगह में से थोड़ा पसार होना पड़ा, और फिर देखा तो चौड़ी जगह, फिर थोड़े झुक के गए और देखा तो एक सफेद लंबी दाढ़ी वाले समाधिस्थ और दूसरे कुछ कद छोटा और काली दाढ़ी। तुम इधर कैसे पहुंचे? बोले महाराज मुझे योग सीखना है। तुम भूखे प्यासे हो, मारा पता इधर का किसने दे दिया तुमको? अच्छा तो वहां झरना है, जल पियो, लेकिन खाने का वहां तुमको जो प्रिय है वो वस्तु पड़ी है, जाओ। तो बोले मुझे लड्डू और चवाणा प्रिय था, तो लड्डू और चवाणा का थाल तैयार। सोचा कि ऐसी गुफा में ये ताजे लड्डू और चवाणा कहां से आ गया, भूसा। और योगी ने कहा कि जितना खा सको उतना लेना, जूठन मत बचाना। तो मैं भूखा था तो मैंने जरा ज्यादा ले लिया, लेकिन खा न सका तो फिर मैंने अब जूठन बचाना नहीं तो उस झरने में जैसे बेईमानी की चाल होती है मनुष्य की, पता न चले, फेंक दिया। मैं खा के गया, बोले अच्छा खा लिया, पानी पी लिया बेटा, बोले हाँ, जूठन तो नहीं बचाई, बोले नहीं गुरु। अच्छा, योग सीखने आया है, आंखें बंद करो। मैं चला था ऋषिकेश और आंखें बंद किया तो आंखें खोली तो ऋषिकेश में पड़ा हूं। फिर वो पर्वत खोजते खोजते मैं थक गया, आज तक वो जगह नहीं मिली। ये 1922 की घटना है। जूनागढ़ में गिरनार है, वो तो फिर अभी कुछ वर्ष पहले की बात है। सुना है कि गिरनार में भी कोई ऐसे गुप्त योगी रहते हैं, लोग घूम के आते, पावड़ियां चढ़ के आते, लेकिन कुछ अदृश्य योगी जहां रहते हैं वहां कोई पहुंचता नहीं। मैं जाऊंगा, ऐसा किसी संत ने ठान लिया। 19 तारीख सोचा कि मुझे कोई ऐसे संत मिले, इस भावना से तड़प से गए तो गिरनार की आधी पावड़ियां चढ़ा और कुछ थोड़ी पगडंडी थी। तो किसी संत ने बुलाया कि इधर आओ। मैं गया, बोले जोगियों का दर्शन करना है, अच्छा चलो मेरे पीछे पीछे आओ। गए तो एक बड़ी चट्टान हटाई और वहां गए तो ये दुनिया का कोई पता ही नहीं, कुछ अलग सी दुनिया, अलग से वृक्ष, ये वो सब, तो ताजुब हो गए। और हमको कुछ संत दिखे, फिर समय कैसे गया कितना गया पता नहीं चला। जब मुझे वो बाहर जहां से लेने को आए थे वहां छोड़ दिया तो कुछ स्कूल के बच्चे ऊपर जा रहे थे, तो किसी ने पूछा कि आज कई तारीख छे, तो दूसरे ने कहा कि तन खबर छे नहीं, 21 तारीख छे। मैं कहा नहीं, आज 19 तारीख अने शनिवार। तो छोकरे हंसने लगे कि आज 21 तारीख और सोमवार है, महाराज आप क्या बोलते। बोले नहीं, मैं तो शनिवार को ऊपर सुबह चढ़ा था और अभी थोड़ा घूम के किसी योगी के साथ आया हूं, बाद में पता चला कि मेरा तो सवा दिन गुजर गया। तो वहां का देश काल अलग होता है, ऐसी ऐसी भी सृष्टियां हैं। तो ये सारे रहस्यों का खजाना तुम्हारे अंदर भरा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जितना पढ़ाई में एमए में अथवा बीए में अथवा एसएससी में सिर खपाया और सर्टिफिकेट मिला, हमने तो इतना सिर नहीं खपाया। 7 साल गुरु के कहने में थोड़ी थोड़ी साधना 2-2 घंटे करते थे बस, बाकी चिंतन मिंतन। एक दिन एक बार 40 दिन लगातार कमरे में बंद हो गए और उससे जो रहस्य मिले तो वो तो अभी तक खुटता नहीं। तो अंदर का खजाना, ये रहस्य प्रकट होते हैं, रोगों से मुक्ति होती है स्वाधिष्ठान केंद्र विकसित होने से। फिर तीसरा केंद्र है मणिपुर केंद्र है, पाताल लोक की रहस्यों को जान सकते हैं, उसे बोलते पाताल सिद्धि। सर्व दुख नाशिनी, सर्व दुख निवृत्ति वाली शक्ति जागृत होती है, सारे मनोरथ आपके फलित हो जाते हैं, आपके आशीर्वाद से दूसरे लोगों के मनोरथ भी फलने में मदद मिल जाती है। तो ये योग साधना के 7 केंद्र हैं, एक एक केंद्र का ढेर सामर्थ्य छुपा है, लेकिन उसमें रुचि जिसकी हो और लगातार साधन करे। जैसे भोजन लगातार बनाया जाता है, ऐसा नहीं थोड़ी देर चूल्हे पे रखा 2 मिनट फिर उतार दिया, फिर 2 मिनट रखा, फिर 1 घंटा उतार दिया, फिर 5 मिनट रखा और फिर 4 दिन पतीली उतार दी, तो कुछ नहीं बनेगा। ऐसे अपन साधना थोड़ी सी करते फिर साधना के विपरीत असाधन ज्यादा कर लेते, कान में पान में मिलने में। तो जो महत्व साधना को देना चाहिए, अपनी शक्तियां जगाने को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, वो नहीं देते। इसलिए धार्मिक लोग करोड़ों मिलेंगे, लेकिन धर्म के खजाने को पाने वाले करोड़ों लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि साधना में सातत्य नहीं है। तो हम लोगों को आप बापूजी बोलते, जैसे तुम कथा सुनते थे ऐसे हम ही तो कथा सुन के तो हमको रंग लग गया विशेष के, चलो भाई अपने को साधना करना है, पाना है। तो साधना किया और पाया भी। तो जब हम साधना करके पा सकते तो तुम क्यों नहीं पा सकते? हमको भगवान का खजाना मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिल सकता है? बोले हमको भी मिला है, लेकिन आपको मिला है उतने में रुको नहीं, और भी है। हमने कर ली शादी, चलो भाइया खुश हो गए, फिर क्या? ये देखा कि ये तो खुश हो, इनकी थोड़ी देर की खुशी के लिए हमारा तो सर्वनाश हो रहा है, हम तो छलांग मार के चल दिए। बोले पत्नी रोएगी, उसका बाप रोएगा, अब भाई खुश हुआ, माँ खुश हुई, हम जाएंगे तो पत्नी रोएगी, माँ रोएगी, भाई रोएगा, पत्नी का बाप रोएगा, पत्नी की माँ रोएगी, पत्नी का भाई रोएगा, पत्नी की भाभी रोएगी। अब उनके रोने को देखो तो मत जाओ, नहीं तो फिर आप अपने रहो, अपन रहे तो क्या वो रोना बंद होगा? वो तो 84 लाख जन्मों में रोते रहेंगे, अपने को जो करना है कर डालो भाई। तो हम तो छलांग मार के चले गए, अब उनको रोना हो चाहे हंसना उनकी मर्जी, ठेका लिया है क्या? अरे वो रोएगा, वो रोएगा, वो रोएगा, मेरी माँ दुखी है, मैं कैसे जाऊं घर छोड़कर? माँ रोती थी, मेरा भाई रोता था, पत्नी रोती थी, माँ रोती थी, अभी वो महंगी माता की समाधि पूजी जाती। एक बार आप ऊपर उठते हो तो आपके साथ जो भी जुड़े हैं कुटुंबी, उनका सबका प्रोग्रेस हो जाता है, सबका भला हो जाता। मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, मेरी माँ के लिए चाहता। हाँ तो माँ के लिए जाओ, भाई के लिए जाओ, अपना ईश्वर को पाओ तो सबके लिए, जिसके लिए चाहते हो उनका भी भला होगा, जिनके लिए नहीं चाहते हो उनका भी तुम्हारे दर्शन से भला होगा। तुम इतने महान हो सकते हो? लेकिन ऐसा कुछ कर दो मेरा धंधा चल जाए, ऐसा कुछ कर दो मेरी शादी हो जाए। तो धंधे कितने लोगों के चल रहे, शादियां कितने लोगों की हो गई, क्या मिल गया? नहीं, हमारा टेंशन खत्म हो जाए। ये टेंशन खत्म हुआ तो दूसरा टेंशन आएगा, सासू टेंशन करेगी, पति टेंशन करेगा, फिर गर्भवती होगी तो वो टेंशन करेगा, भूं भूं वो टेंशन करेगा, फिर उसकी नाक से लिंट निकलेगी वो टेंशन करेगी, फिर उसको दांत आए बुड़बुड़ वो करेगा। बाप हुए तो फिर पत्नी बोलेगी अब मायके चलो, ये बच्चे का जरा था बुखार आ गया, हम चलो हम चलो, सारी जिंदगियां इसी में खप जाएगी। कर्नु सो कर्नु थो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद। जो करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है ईश्वर प्राप्ति, वो तो नहीं किया। कर्नु हतो सो ना कियो, पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंध, बुढ़ापा हो गया। जरा उठा दीजिए, कहाँ गया जुगलू? मैं तो खाना हजम नहीं होता है, दांत भी नाक टेढ़ी हो गई, आंखें अंदर चली गई, आप कोई पूछता ही नहीं। जब जवानी थी कुछ कर सकते थे तो नहीं किया, बुढ़ा बुढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया, आप कोई पूछता ही नहीं, आप करोगे तो क्या होगा? सारे बुढ़ी बुढ़े रोते बेचारे। अभी मम्मी का टेंशन है, फिर तुम मम्मी बनोगे, तुम बेटियों का टेंशन होगा, तुम्हारी बेटियों की शादी नहीं होगी तो टेंशन कहाँ जाएगा? बेटे होंगे और वहां लोफर हो जाएंगे तो टेंशन होगा, मैं शादी कर लूं मेरे बेटे हो जाए लोफर हो जाएगा तो टेंशन, आ गया नहीं मानेगा तो टेंशन, बेटी हो गई और उसके विवाह नहीं होता तो टेंशन, विवाह हो गया और पति पत्नी झगड़ते तो टेंशन। ईश्वर प्राप्ति के सिवा टेंशनों की जड़ कटती ही नहीं है भांजे, समझ लिया भांजी? ईश्वर प्राप्ति के सिवाय मुसीबत की जड़ कभी नहीं कटती। एक पत्ता तोड़ दें टेंशन गया, लेकिन दूसरे कई पत्ते पैदा हो रहे हैं, जड़ को काटो। टेंशन के पत्ते बनाने वाली जड़ जो है ना अज्ञान, अपने और ईश्वर के बीच में जो अज्ञान है उसकी जड़ को काटो और ईश्वर को प्रकट करो, तब दुख मिटेगा भांजी। बाकी दुख मिटाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे, निहत्था कृष्ण पूरी सेना को भारी है भांजे।
क्योंकि कृष्ण ने अपने आप को जान लिया, इसलिए पूरी सेना को भारी है। लेकिन भांजे को भी भारी है, शाकुनी को भी भारी है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में मधुमय है ना। कृष्ण ने अपने आत्म स्वभाव को जाना है, इसलिए भारी पड़ते हैं। कौन हराए कृष्ण को? कृष्ण की जिस पर कृपा है उस अर्जुन को कौन हराए? तो आप जैसे कृष्ण की कृपा से अर्जुन नहीं हारता, ऐसे आपकी कृपा से कई लोग हारने से बच सकते हैं। इतनी शक्ति है भांजे भांजियों में। लेकिन क्या है कि जैसे मुखी का लड़का था, एक गांव का मुखी था, सरपंच को मुखी बोलते, पहाड़ों में तो प्रधान बोलते हैं, छोटे छोटे गांव का सरपंच होता उसको प्रधान बोलते हैं, और पहाड़ी इलाकों में जो प्रधान होते हैं ना उनको मस्का मारने वाले क्या बोलते, कह रहे भाई प्रधानमंत्री को तो हमने नहीं देखा, आप तो हमारे प्रधान नहीं प्रधानमंत्री हो, बस एक दो सिगरेट का पॉकेट दे दो और वो प्रधानमंत्री हवा में उड़ेगा, 200 झोपड़े का गांव का, 150 मकानों का प्रधान अपने को मैं कोई चीज हूं। तो ऐसा कोई मुखिया का लड़का था, प्रधान का बेटा था, कुमाऊ का होगा कि गढ़वाल का होगा कि कहीं का भी होगा, लेकिन वो प्रधान का बेटा था, मुखिया का बेटा, वो बचपन में शादी का जमाना था, तो छोटी सी दुल्हन और छोटा सा दूल्हा, ब्राह्मण मंगलम भगवानम मंगलम गणत भजा मंगलम पुनरेखाक्षाय सर्व मंगलाय तनु हरिवर कन्या, ये सब कर रहा था। इतने में बाहर डुगडुगी बजी वो बंदरिया नचाने वाले की, तो जो प्रधान का बेटा था ना मुखी का बेटा, वो उठ के दौड़ा, तो बाप ने कहा बेटा कहाँ जाता है कहाँ जाता है? बोले वो मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अरे फेरे फिरने? बोले पापा तुम फिर लेना, पापा नहीं बोला होगा, पिताजी तुम फिर लेना। अरे शादी तुझे करना? बोले नहीं नहीं मैं बंदरियां देखने जाता हूँ। अब शादी करने वाला बंदरियां देखने जा रहा है और फेरे दूसरे फेरे का क्या? ऐसे ये जीवात्मा भी प्रधान का बेटा है, मन बन गया प्रधानमंत्री और आप बन गए उसके बेटे और भागे जा रहे हैं बंदरियां देखने को। अरे ईश्वर प्राप्ति के फेरे फिरो ईश्वर से, 3.5 फेरे ही फिरने हैं, कुंडलनी शक्ति 3.5 फेरे मार के बैठे आपको साधना में, वो 3.5 फेरे सीधे करने बस, फिर तो जगी शक्ति चले, 7 फेरे नहीं फिरने 3.5 फिरने बस। ज्ञानेश्वरी गीता में सब लिखा है, 3.5 कुंडल मार के वो जीवनी शक्ति पड़ी है, उसे कुंडलनी शक्ति कहते हैं, वो सुषुप्त है तब तक ये जीव, जब जागृत होता है तो ईश्वरत्व की तरफ ले जाती है। लहसुन प्याज शराब मांस इनसे बचे और ये साधना करे, 6 महीने के अंदर तो कहीं का कहीं पहुंच जाए। कानपुर में आज से 35 साल पहले, कानपुर आर्यनगर, आर्यनगर है ना, कानपुर में आर्यनगर है, वहां बड़ा मैदान था, वहां संत सम्मेलन हुआ था 35 साल पहले आज से, 1969-70 के आसपास। तो हमारे गुरुजी नैनीताल थे, मेरे को भेज दिया, तो हम गए, तो बोले फलाने फलाने महामंडलेश्वर सर्वदर्शनाचार्य वेदांताचार्य प्रवचन करेंगे, फिर बोले ये फलाने फलाने स्वामी एम ए स्वामी प्रवचन करेंगे, डॉक्टर जगदीश्वरानंद महाराज प्रवचन करेंगे, तो ये जो भी साधु का नाम आता तो आगे पीछे लंबे पर लंबे टाइटल होते थे। और मेरे लिए बोले महाराज आपका कोई, मैं क्या बस लीला सभापू का, तो ये आशाराम महाराज लीला सभापू के शिष्य प्रवचन करेंगे। तो कानपुर में संत सम्मेलन में अपना नाम खाली इतना है, मैं क्या ये अपने भी थोड़ा डिग्री ले लो, थोड़े टाइटल ले लो। तो मैं वो कानपुर का सम्मेलन पूरा करके ऋषिकेश चला गया, शिवानंद डिवाइन लाइफ वालों के आश्रम के नीचे राघवानंद थे आचार्य, दर्शन महाविद्यालय अभी भी है, मैं उसमें भर्ती हो गया। और आचार्य की परीक्षा देने के लिए तीसरी में से सीधा आचार्य की परीक्षा देनी थी मुझे, वेदांताचार्य बनना था। आसाराम महाराज वेदांताचार्य बड़ा होता है, एमए होता है संस्कृत में, जो आचार्य है शास्त्रीय पद्धति बराबर बीए पद्धति और आचार्य पदवी बराबर एमए पदवी। तो हमने कहा चलो ये पदवी ले लेते हैं। तो उसमें गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, उसकी सब आचार्यों की व्याख्या होती, जैसे पीएचडी के कुछ कुछ खास कोर्स होते ऐसे आचार्य का भी वेदांत आचार्य का कोर्स था। तो मैं उसमें प्रविष्ट हुआ, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो भाई ये फलाने दर्शनाचार्य ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा। तो गीता के छठे अध्याय पर जब व्याख्या कर रहे तो आचार्य ने बोल, तो इतने में एक साधु आए, मैं गंगा किनारे स्नान करने गया तो मेरे सामने देखा और वो साधु हंस पड़े। मेरे को बोला स्वामी जी कहां से आए? मैं क्या ऐसे तो नैनीताल से, लेकिन अभी कानपुर का सम्मेलन में से सीधा यहां आया हूं, अभी जरा आचार्य की पदवी लेने के बहाना। तो मेरे सामने देखा और बहुत हंसे, बोले आपको पदवी लेना बाकी है? मैं क्या नहीं बाकी तो नहीं है। और मैं भी खूब हंसा, वो भी खूब हंसे, उसकी आंखों में तेज था। फिर हम रोज मिलते थे गंगा किनारे थोड़ी बहुत। तो बोले अभी आपकी पढ़ाई चालू है? मैं क्या, तब तक 8 दिन हो गए थे। बोले अभी तक पढ़ रहे हो? मैं क्या, जरा सर्टिफिकेट के लिए। बोले अच्छा। तो दूसरे दिन गीता के छठे अध्याय पर व्याख्या हुई, तो जो हमारे पढ़ाने वाले आचार्य थे उन्होंने व्याख्या की, तो दूसरे विद्यार्थी ने की, तो हमने की। तो बोले आपने आचार्य की परीक्षा दे आए हो क्या? मैं क्या नहीं, मैं तो तीसरी पढ़ा हूं, सीधा आचार्य की परीक्षा में बैठना चाहता। बोले नहीं, तुम जो व्याख्या कर रहे हो तो। मैं क्या अच्छा महाराज, प्रणाम कर दिया उसको। मैं क्या चलो हो गया अपना पूरा, फिर गया ही नहीं, नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, अब आशाराम बापू से ही गुजारा हो रहा है, वेदांताचार्य फलाने दर्शनाचार्य से कोई जरूरत नहीं लगती मेरे को टाइटलों की। सर्वम अधितम तेना, तेना सर्वम अनुष्ठितम, ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। उसने सर्व अध्ययन कर लिया, उसने सब अनुष्ठान और पठन कर लिया, जिसने संसार से सुख लेने की आशा छोड़कर संसारी सुख से निराश होकर भगवान के सुख में लग गया, उसने सब पढ़ लिया। ये ही तो उपदेश हम पढ़ते थे संस्कृत में, घर में थे तब। तो इसका श्लोक मुझे जच गया, तो वो परीक्षा देने के बदले मैं जाके किसी साधु की समाधि पे बैठ गया। परीक्षा के दिन थे संस्कृत के, तो फिर ये श्लोक आ गया, तो वो परीक्षा छोड़ के फिर ये आचार्य की परीक्षा देने का हुआ, तो फिर वो साधु मिल गया और ये गीता के छठे अध्याय की व्याख्या, हमारी व्याख्या ऐसी हुई कि वो सब बोले आप तो आचार्य करके आए। मैं क्या अच्छी बात है, हो गए अपना आचार्य करके आए। यहाँ कर्शन भाई रहते थे, वो पीएचडी कर रहे थे, तो उनको किसी ने कहा कि पीएचडी में तुमको मदद मिलेगी आशाराम बापू के पास जाओ। तो कर्शन भाई इधर आए, तो मेरे को पीएचडी करना है मेरे को। मैं कहा देखो हमारा सत्संग, तो फिर वो सत्संग सुन के यहीं आश्रम में कर्शन भाई माड़ी, तो उनको पीएचडी पढ़ाने वाले आए, बोले बापू जी अब ये ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। मैं कहा भाई हम तो 3 पढ़े हैं। बोले नहीं, ठीक जगह पर पीएचडी कर रहे हैं। घर मां छे काशी ने घर मां मथुरा, घर मां छे गोकुळियुं गाम रे, मारे नथी जाऊं नथी जाऊं तीर्थ धाम रे। तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, आप जहां रहे वो जगह तीर्थ बन सकती है। इधर शराबियों के अड्डे थे, 40-40 भट्टियां चलती थी यहां नदी में, पुलिस वाले आते तो उनकी बड़ी पिटाई होती थी। और हमको भी रहने में पहले जरा कठिनाई किया, लेकिन हमारे साथ तो ईश्वर थे, हम डटे रहे। 40 भट्टियों वाले चले गए, मार खाने वाले पुलिस की बसें भी चली गई, अभी तो आते हैं बेचारे सब सेवा भाव से। यहां नदी में 40-40 भट्टियां चलती थी, जहां बैठे वहां तो खड्डे खोद के दारू छुपा देते थे, और आगे जाबल ऋषि की तपस्या की जगह थी। सब ऐसा हो गया, एक उसको साध लो, एक परमेश्वर को साध लो, बस सब सद जाएगा। एक उसको छोड़ के दुनिया भर को करो, सब भी रोते ही रहना है। नौकरी करने वाले भी रो रहे हैं, बेटे करने वाले भी रो रहे हैं, शादी हो गई वो भी रो रहे हैं, दुल्हने भी रो रही है, दूल्हे भी रो रहे हैं, म्याऊं म्याऊं वाले भी रो रहे हैं, रोने वाले बच्चे भी रो रहे हैं, और जिनको चुप करा रहे हैं वो भी रो रहे हैं बच्चों के साथ के क्या करे, बेटे को ये हो गया, अपेंडिक्स हो गया, और बेटे को इस उम्र में कम दिखता है, बेटी है लेकिन उसका एक ऐसा है, इधर ऐसा हो गया है, क्या करे, वैसा करे क्या। ईश्वर को प्रकट करने की ताकत वाला आदमी कितना दुखी हो रहा है, ईश्वर का बाप बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का मित्र बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का गुरु बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर का सखा बनने की ताकत रखने वाला मनुष्य, ईश्वर की मां बनने मौसी बनने वाली ताकत रखने वाला मनुष्य, आज ही मेरी मां का टेंशन है, मलाना टेंशन है, मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए, उस अरे सबके लिए तो पाले, तो पहले ईश्वर को पाले, फिर सब ठीक हो जाएगा। सतरति लोकान तारयति, वो तो तरता है दूसरों को तारेगा, सतृप्तो भवति वह तृप्त होगा, दूसरों को तृप्त कर देगा। हरे साई क्या होगा मेरा, ओहो मेरे दो बेटे उनकी शादी नहीं होती, दो बेटियां हैं वो, मैं मर गया, कुआ रहा था तभी शादी नहीं हो रही तभी मर रहा था, अब शादी हुई तो बच्चे नहीं हो रहा था तब मर रहा था, अब बच्चे हुए तो अभी उनकी शादी नहीं हो रही तब मर रहा है। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। तुम किधर को जा रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने को, जहां प्रॉब्लमों की आग जल रही उधर जा रहे। वशिष्ठ जी कहते राम जी, किसी को आग लगी और तिनके डाल रहे आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है, किसी को आग लगी और पेट्रोल पंप का फुवारा करके आग मिटाना चाहे तो मूर्ख है। अज्ञानी अपने ही राग द्वेष की आग में जल रहे हैं, और वैसे ही अज्ञानियों में सेट होकर लोग निर्दुख होना चाहते तो मूर्ख है। जो खुद दुख में पच रहे हैं उन्हीं को फॉलो करके लोग सुखी होने जा रहे हैं, जो दुखों में पच रहे हैं टेंशन में पच रहे हैं उन्हीं को फॉलो करके लोग टेंशन रहित लाइफ गुजारना चाहते हैं। हाउ कैन बी, व्हेन विल बी, हाउ कैन बी। बापू जी तीन पढ़े और ऐसा भी बोलते क्या, हाँ यही तो बात है। नारायण 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 नारायण, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक कहते सब होते हैं सब ते एक न हो, एक आत्मा से सब होता है, सब से आत्मा नहीं बनता, परमेश्वर से सब होता है, सब मिलके परमेश्वर को नहीं बना सकते, उस परमेश्वर के निकट आओ, बस जल्दी से जल्दी पाओ, तड़प बढ़ा दो। ऑर्डिनरी लड़कियों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी लड़कों की नकल मत करो, ऑर्डिनरी गृहस्थियों की नकल मत करो, मीरा होती तो क्या करती, शबरी होती तो क्या करती, ध्रुव होते तो क्या करते, रामकृष्ण होते तो क्या करते, विवेकानंद होते तो क्या करते, बुद्ध होते तो क्या करते, महावीर ने क्या नहीं किया, मल्लिनाथ कितनी सुंदरी थी और राजे महाराजे उसको चाहते थे शादी करने को, थूका भी नहीं उन पर, राजे महाराजे नाक रगड़ते थे कि ये कन्या हमको मिल जाए, कन्या ने कहा नहीं मैं भोगियों की भोग्या नहीं बनूंगी,
भोगी राजा मुझे भोग के बुद्धि बना दे और मैं मर जाऊं दो चार बच्चे करके ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगी। साधना में लगी तो वो भगवान मल्लियनाथ बन गई कन्या। जैन धर्म की 19वीं तीर्थंकर है मल्लियनाथ, भगवान मल्लियनाथ। मैं भी बोलता हूं हाथ जोड़ के भगवान मल्लियनाथ, नहीं तो कन्या थी किसी समय तो, लेकिन भगवत ध्यान किया तो भगवान मल्लियनाथ, मल्लिका भगवान मल्लियनाथ बन गई। जब एक मल्लिका सुंदरी कन्या और राज्य और राजकुमार उस पर लट्टू हो रहे थे, सबको ठुकरा कर साधना में भगवान बन गई, क्या करे, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। तो बुद्ध के पास तो थी, मेरे को अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल गया तो क्या प्रॉब्लम सोल्व हो गए, और प्रॉब्लम बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा लड़का मिला तो ज्यादा प्यारा होगा, ज्यादा प्यारा होगा तो कमर तोड़ प्रोग्राम ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बुढ़ी बन जाएगी तू, अच्छी लड़की मिली तो तू जल्दी बुढ़ा बन जाएगा। ओम होम 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 होम। क्या करे तो सत्संग में समझाए, नहीं तो मां आंधड़ी दौड़, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, जैसे कुएं में भांग पड़ी है, जो भी पिए सब नशे में, तो माहौल में विचारों का कसूर नहीं है, ऐसे ही माहौल में रहते हैं। पढ़ो लिखो शादी करो बच्चे करो और टेंशन में ओके मर जाओ, बस टेंशन मिटाते मिटाते टेंशन का शिकार होके मर जाओ। अब हम शादी करेंगे तो पिता माता का टेंशन दूर होगा, तो पिता माता भी शादी करने से उनका टेंशन, उनके माँ बाप का टेंशन दूर हो गया क्या? संसार को फॉलो करने से टेंशन लेस कभी नहीं होगा, ईश्वर को फॉलो करने से टेंशन लेस होगा, क्या ख्याल है? अभी तो समझ में आता है, लेकिन दरवाजे के बाहर जाएंगे तब दूसरी खोपड़ी हो जाएगी। हम काम मना करते शादी करने की, लेकिन एक बार ईश्वर को पालो पहले, और शादी हो गई तभी भी संसार में मत गिरो, ईश्वर को पाके फिर, नहीं हुई तो करो ही मत, और हो गई तो ईश्वर को पाने के बाद संसारी बनो। बस मूंछ पे हाथ घुमाओ के बस पहले ईश्वर पाऊंगा, फिर पति पाऊंगा, फिर पत्नी पाऊंगा, अथवा पति पत्नी हो गया किसी भाग्य से, किसी ने धर दिया तो ठीक है, अब भावो ईश्वर पाने के लिए। शबरी बिलन के फेरे फिर रहे थे, पंडित ने कहा सावधान सावधान, तो शबरी सावधान हो गई कि ये तो उसने कहा है, छेड़े खोल के तो भाग, उसका बाप देखते ही रह गया, जान वाले देखते रह गए, दुल्हे तेरे जैसे दुल्हे कई जन्मों में मिले, शबरी भाग गई, तो भाग गई नहीं, ठीक जगह पर पहुंची शबरी, और राम जी झूठे बेर खा रहे शबरी के, है नहीं तो उसकी मम्मी को दुख हुआ होगा, शबरी की माँ को, शबरी के पापा को भी दुख हुआ, और शबरी के भाइयों को भी दुख हुआ था उस समय, लेकिन अभी उनका कितना कल्याण हुआ। ऐसे मीरा की माँ को, मीरा के भाइयों को दुख हुआ होगा, क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गे धनकार, कौन किसका साला, कौन किसका ससुर, कौन किसका बाप, कौन किसका, तो चला चली का मेला है, जिसने ईश्वर पा लिया वो जीत गया, बाकी सब मरे जन्मे मरे। अब कितने मकोड़े आए, कईयों के साले होंगे, ससुर होंगे, वो पतंगे आए, वो भी किसी जन्म में मनुष्य बने होंगे, अब कौन पूछता उनको, कितने कीड़े मकोड़े भी तो कभी मनुष्य बने थे, मम्मी का टेंशन दूर किया होगा, पापा का टेंशन दूर किया होगा, अभी मकोड़ों का टेंशन कौन दूर करता है। ओ माय गॉड व्हाट यू थिंक,
सरप्राइज आटला डॉलर थी जाटली निरात पर मैं तो मरी जीशु खपी जीशु तो ये निरात ना हो बे रोटला खावाना पहला ईश्वर प्राप्ति करवानी छे डॉलर की ऐसी तैसी और जो ईश्वर के तरफ चलता है ना तो संसार की चीजें उसके पास अपने आप आती भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम आपकी ठुकरारी तो वो बेकरार आने को है आप ईश्वर को छोड़कर संसार के पीछे भटकते तो संसार दूर भागता है आप संसार की परवाह छोड़कर ईश्वर के तरफ रखते तो संसार तुम्हारे पीछे पीछे पाले हुए कुत्ते की नहीं आता ऐसी बात है लेकिन इतनी बार तो मेरी शादी हो जाए यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके ये जॉनी वॉकर बजाता था ऐसी पिक्चर में मेरे को ले गया कि ये शादी का मानता नहीं चलो जरा पिक्चर दिखा के आए तो जबरदस्ती पटा पुटा के वो पिक्चर दिखाने ले गए थे जॉनी वॉकर का था तो किसी की शादी थी यार बना है दूल्हा फूल खिले हैं दिल के मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके ऐसा बजाता था अहमदाबाद में कृष्ण सिनेमा ये बाजू बदे फेर व्या लोग को तो दूसरी फिल्म में ले गए थे हकीकत मैं तो रोता था फिल्म में नीचे आंखें में गए भगवान मेरा क्या पाप है इधर आया बलात ले गए रोड पे आए ये क्या देखना सब चलचित्र फिल्म जिससे सारी दुनिया बनी वो तुम्हारे साथ है उस परमेश्वर को देखो परमेश्वर का आनंद लो परमेश्वर को जानो ये सब क्या चलचित्र देखना पहले तो देश की खबर जानने के लिए थोड़ी समाचार के लिए टीवी खुलवा देता वो भी नहीं देखता तो पीछा तू रह वो देखो फिर आगे पीछे का दूसरा भी देखो मरवा दे ओम 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 नारायण नारायण नारायण
ओम कार मंत्र
गायत्री छंद
परमात्मा ऋषि ही
परमात्मा ऋषि
अंतर्यामी
देवता ईश्वर प्रीति अर्थे जपे विनियोग
खूब प्यार से ओ ओ हरि ओ प्रभु जी
ओम
प्यारे जी
ओम ओम
मेरे जी
आनंद
तू आनंद स्वरूप था मुझे पता नहीं था। तू मेरे साथ था, सुहृद था, माधुरी रूप था। प्रभु तेरी जय हो। माधुर्य हो, ओ हो, आनंद हो, ओ हो, हरि हो, ओ हो, भक्ति हो। नारायण 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 हो, शिवा ॐ नारायण नारायण ना ब्रह्मा नारायण ना विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हो। नारायण 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 ओम हरि नारायण नारायण ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम